ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। देशभर में आज 16 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। कोरोना के 1154 नए मामले आए सामने। बिना ऑक्सीजन 10 बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले आंग्रिता शेरपा का हुआ निधन। और दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3,13,35,000 से अधिक लोग हुए संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। आज देशभर में 16 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जिनमें 6 लोग सिर्फ काठमांडू घाटी के थे। इसके साथ ही नेपाल में कोरोना संक्रमण होने के बाद मरने वालों की संख्या 427 हो गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में आज मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज 1154 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 1005 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। इसे मिलाकर नेपाल में अब तक कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या जहां 65,266 हो गई है 276 हो गई है, वहीं अब तक 47,238 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 17,611 है। बिना ऑक्सीजन के 10 बार माउंट एवरेस्ट के शिखर को चूमकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले आंग्रिता शेरपा का आज निधन हो गया। आज सुबह 10 बजे उनके अपने ही निवास चोरपाटी काठमांडू में 72 वर्षीय शेरपा का निधन हो गया। ये बात उनके परिजन नूर छेपाल शेरपा ने बताई। सोलोखुम्बु के थामे में जन्मे और हिमचीता के नाम से विख्यात पर्वतारोही शेरपा के पार्थिव शरीर को शेरपा गुम्बा में रखकर परसों बुधवार को उनका बौद्ध परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सुविख्यात नेपाली पर्वतारोही आंग्रिता शेरपा के निधन पर दुख जताया है। अपने ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति भंडारी ने कहा है, हिमचीते के निधन से देश के पर्वतारोहण पर्यटन के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। दिवंगत शेरपा की आत्मा के लिए चिर शांति की कामना करते हुए राष्ट्रपति ने शोकाकुल परिवार के लिए समवेदना व्यक्त की है। इसी तरह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कीर्तिमानी पर्वतारोही आंग्रिता शेरपा के निधन पर शोक जताते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा है, शेरपा के विश्व कीर्तिमान हमेशा स्मरणीय रहेंगे। इसी तरह संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराय ने भी दिवंगत शेरपा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अगले 5 दिनों तक देश के विभिन्न स्थानों में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। ये जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने दी। विभाग ने एक विशेष बुलेटिन जारी करते हुए सभी लोगों से सतर्कता अपनाने का आग्रह किया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की आज के लिए तय की गई सचिवालय की बैठक कल तक के लिए स्थगित हो गई है। कल के लिए तय की गई बैठक दोपहर 12 बजे के बाद बारवाटार में होगी। ये जानकारी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समिति ने विज्ञापन नियमन आयन का पूरी तरह से क्रियान्वयन करने का संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय को निर्देश किया है। आज सिंह दरबार में बुलाई गई समिति की बैठक ने आयन के मुताबिक आने वाले कार्तिक 7 कते तक विज्ञापन बोर्ड गठित करके डाउनलिंक अनुमति लेकर नेपाल में प्रसारण कर रहे टेलीविजन चैनलों को विज्ञापन रहित यानी क्लीन फीड बनाने का मंत्रालय को निर्देश किया है। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आने वाले आश्विन 19 गते सोमवार को पार्टी केंद्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन ललितपुर में होगी। पार्टी के आगामी 14वें महाधिवेशन की तैयारी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। ये जानकारी कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल ने दी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से नेपाल के लिए पाकिस्तान के राजदूत मजहर जावेद ने आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में विदाई से पहले मुलाकात की। अपना कार्यकाल पूरा कर चुके राजदूत जावेद के साथ मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति भंडारी ने सफलतापूर्वक कार्यकाल संपन्न करने के लिए उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। राष्ट्रपति कार्यालय के सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमरे ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा के उपायों का प्रभावकारी रूप में पालन करने का निर्देश किया है। आज त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल का निरीक्षण और अनुगमन करने के दौरान मंत्री भट्टराय ने ऐसा निर्देश किया। बता दें कि विश्व में महामारी का रूप ले चुके कोविड-19 की महामारी के बाद चैत्र के दूसरे हफ्ते से जारी लॉकडाउन के बाद आंतरिक उड़ानें बंद थीं। आज 6 महीने के बाद आंतरिक उड़ानों को पुनः शुरू किया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ,
1498 फोन गर्नुस्।
समस्या पोस्टपेडमा नि आयो,
1498 फोन गर्नुस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेडको पुक नम्बर पनि चाहिएको थियो,
त्यसको लागि पनि 1498 फोन गर्नुस्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कुनै पनि समस्या आएमा जे जे सोध्न मन छ 1498 फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। मकवानपुर के राक्सीरांग वार्ड नंबर 3 की मैनाटार में एक जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से स्थानीय 13 वर्षीय रिजम तितुंग और 11 वर्षीय अनुप वाइबा की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर ने दी। रूपंदेही में पिछले 4 दिनों से लापता एक स्वास्थ्यकर्मी सीनियर अहेबा विष्णु प्रसाद नेपाल का शव मिला है। वे बीते गुरुवार की रात बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 9 स्थित होटल पार्क प्लाजा से मोटरसाइकिल से घर की तरफ निकले थे, लेकिन वे अपने घर नहीं पहुंच सके थे। इनकी लाश को तिलोत्तमा वार्ड नंबर 16 मधवलिया बिहुली में नहर से बरामद किया गया था। ये जानकारी पुलिस ने दी। कोविड-19 महामारी पर रोकथाम के उद्देश्य से देश भर लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्थगित की गई आंतरिक हवाई उड़ान 6 महीने के बाद आज से पुनः शुरू हुई है। सामान्य अवस्था में होने वाली उड़ान संख्या का महज 25% उड़ान ही मौजूदा समय में संचालित करने की नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अनुमति दी है। हालांकि प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि पहले 7 दिन की स्थिति को देखकर क्रमशः उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल दैनिक 50 आंतरिक उड़ानें होती हैं। आज बुद्ध एयर ने राजबिराज को छोड़कर अन्य सभी गंतव्यों के लिए और यति एयर ने पोखरा, चितवन और विराटनगर के लिए उड़ानें भरी थीं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के बाद अब चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित गैंसू प्रांत के लानजोउ शहर में सैकड़ों लोग एक नए संक्रमण से पीड़ित पाए गए हैं। ये संक्रमण ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया से फैल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को पीड़ित कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गैंसू प्रांत के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल विभाग के हवाले से बताया कि इस बैक्टीरिया से करीब 3,245 लोग संक्रमित हैं। बीते सोमवार को 21,000 लोगों को टेस्ट किया गया था, जिसमें शुरुआती तौर पर 4,646 लोगों को पॉजिटिव बताया गया। हालांकि ये संख्या उम्मीद से ज्यादा हो सकती है और फिलहाल इसके फैलने को लेकर प्रशासन और आम लोग चिंतित हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 11 सरकारी संस्थानों को मुफ्त टेस्ट और इलाज के लिए अस्पताल का दर्जा दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,13,35,900 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,29,21,200 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 9,66,300 से अधिक की जान गई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां 70,12,790 लोग कुल संक्रमित हैं, वहीं 2,04,202 लोगों की जाने जा चुकी हैं, जबकि 42,61,894 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 55,23,917 है। इनमें से 88,345 लोगों की जाने जा चुकी हैं और 44,40,775 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 45,44,629 है, जबकि 1,36,895 लोगों की जाने जा चुके हैं और 38,51,227 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस तरह रूस में कुल संक्रमितों की संख्या 11,09,595 है, वहीं 19,489 लोगों की जाने जा चुकी हैं और 9,11,973 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। देशभर में आज 16 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। कोरोना के 1154 नए मामले आए सामने। बिना ऑक्सीजन 10 बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले आंग्रिता शेरपा का हुआ निधन। और दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3,13,35,000 से अधिक हुए संक्रमित। इसके साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।